الحمد لله بكفاه وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا إلى الآخر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. एक मिनट के लिए जरा इसको पॉज कर देंगे प्लीज रिकॉर्डिंग को, कोई इम्पोर्टेंट मैसेज आया हुआ है. دوبارہ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو یہ جو آیات ہم نے پڑھی تھیں 4 سے لے کے 8 تک، اس کا خلاصہ تفسیر ہم نے مکمل کر لیا تھا. نہیں، خلاصہ تفسیر ہم پڑھ رہے تھے جس کے اندر کہ انہوں نے پھر ربط آیات بھی بتائی تھیں کہ ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے نے دو واقعات کا ذکر کیا کہ جب بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ نافرمانی کری اور ان کے اوپر عذاب آیا. ٹھیک ہے، تو یہ تو پہلے ہو چکا تھا. ٹھیک ہے، اور اس کا ذکر قرآن مجید میں ایسے اللہ تعالیٰ نے کیا کہ یہ بتاتے ہوئے کیا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو یہ بات بتا دی تھی ان کی کتاب کے اندر. ٹھیک ہے، بنی اسرائیل کو ان کی کتاب کے اندر یہ بات بتا دی تھی کہ تم لوگ دو مرتبہ جو ہے نا وہ زمین میں فساد کرو گے اور بہت بڑی سرکشی کرو گے، علوان کبیرہ، کبیر سرکشی، علوان. ٹھیک ہے، علوان یعنی سرکشی اور کبیر جو ہے وہ بڑی. ٹھیک ہے، لتعلن، تو جب تم ایسا کرو گے تو تمہارے ساتھ جو ہے نا پھر ایک عذاب آئے گا. وہ عذاب کس شکل میں ہوگا کہ جو دنیا کے اندر سخت جنگجو قسم کے لوگ ہوں گے وہ تمہارے اوپر مسلط کر دیے جائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے اوپر بھی جو جو حالات آئیں گے، بڑے بڑے جو حالات آئیں گے، تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتا دیے. ٹھیک ہے، تو وہ تو 1400 سال پہلے بتا دیے گئے اور وہ حالات جو ہیں وہ اس کے بعد آتے گئے آتے گئے اور ابھی بھی وہ حالات آ رہے ہیں. تو یہ مستقبل کی پیشین گوئی تو اس کو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ پیشین گوئی تو ہوتا ہے ایک طرح کی ازمشن یا ایک گمان کی بنیاد پر جو مستقبل کے بارے میں بات کہی جائے، تو اس کو یعنی مغیبات کہا جاتا ہے اصل میں. ٹھیک ہے، مغیبات کا علم یعنی جو غیب کی باتیں ہیں ان کا علم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دیا، وہ حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح تورات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بھی اسی طریقے سے مغیبات کا علم دے دیا تھا کہ ایسا ایسا تمہارے ساتھ ہوگا. اب جو ہے وہ ہم ربط آیات کے اندر وہ واقعات پڑھ رہے تھے کہ جن کا کہ یہاں پر ذکر ہے. ٹھیک ہے، ان میں سے پہلا واقعہ اس طرح کا جب ہوا تھا تو وہ سلیمان علیہ السلام کی وفات کے کچھ عرصے کے بعد ہی پیش آ گیا تھا. ٹھیک ہے، کہ مصر کا بادشاہ بیت المقدس کے اوپر چڑھ دوڑا تھا اور اس نے جو ہے نا وہ ان کے یعنی مال وغیرہ کو لوٹ لیا تھا، لیکن مسجد اور شہر کو نقصان نہیں پہنچایا تھا. پھر اس کے بعد دوسرا واقعہ ہوا، اس کے بعد مزید 400 سال بعد. ٹھیک ہے، کہ بیت المقدس میں جو جو یہودی تھے انہوں نے بت پرستی تک شروع کر دی تھی. یعنی تھے تو یہ یعنی توحید کے علمبردار تھے نا، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں سے تھے، لیکن اتنا زیادہ گناہ شروع کیا کہ بت پرستی شروع کر دی. ٹھیک ہے، جیسے کہ ایون موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بھی انہوں نے ایسی حرکت شروع کری تھی، گو سالا پرستی. ٹھیک ہے، وہ جو بچھڑا بنایا تھا سونے چاندی اور اموال سے ملا کر کے بچھڑا بنایا تھا، تو اس کی پوجا انہوں نے کچھ دنوں کے لیے شروع کری تھی. پھر موسیٰ علیہ السلام واپس آ گئے تھے اور ان کو جو ہے وہ سخت سزا دی گئی تھی، تو ایسی بت پرستی انہوں نے شروع کر دی تھی. انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے مسلمانوں کے اندر بھی ایسے حالات آئے ہوئے ہیں اور آ چکے ہیں، جیسے کہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ بانی تبلیغی جماعت. ٹھیک ہے، ان کی سوانح حیات کے اندر کیا لکھا ہوا ہے कि जब उन्होंने काम शुरू किया था तो उस वक्त इंडिया के अंदर जो दिल्ली के करीब मेवत का इलाका है, मेवत, ठीक है, उस मेवत के इलाके के अंदर मुसलमानों का ये हाल था कि उन्होंने बाकायदा बुत रखे हुए थे अपने घरों में हिंदुओं को देख करके। हिंदुओं का इतना असर आ गया था कि मुसलमान जो है उनकी तरह से बाकायदा बुतों की, यानी बाकायदा बुत परस्ती, या कम से कम बुत जो है वो उनकी, उनका इकराम करना, तो बेसिकली ये शिर्क ही शुरू हो चुका था। और फिर अल्लाह ताला ने उनको तौफीक अता फरमाई, मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह को, कि उन्होंने फिर ऐसा काम किया, ऐसे लोगों को जो है वो दीन के रास्ते के ऊपर मायल किया कि यही मेवत की बस्ती, उन्हीं के जिंदगी के अंदर ही इतनी बड़ी तब्दीली आ गई कि बुत परस्ती तो दूर की बात, ये खुद दूसरों को दीन की तबलीग देने वाले बन गए, दीन की तबलीग देने वाले बन गए, ठीक है। तो ये तबलीगी जमात की इब्तिदा जो है वो वहां से हुई थी, और फिर उसके बाद ये वहां से फैलता गया तबलीगी जमात का काम, और पूरी दुनिया के अंदर ये काम मौजूद है। अच्छा, अल्लाह ताला इसकी हिफाजत फरमाए। तो ये दूसरा वाकया था, और तीसरा वाकया कि बुख नसर ने जो है वो बैतुल मुकद्दस पर चढ़ाई कर दी थी। ये शाह बाबुल था, बाबुल इराक की एक जगह है, बैबलोन उसको अंग्रेजी में कहते हैं। तो इसने वहां पे हमला किया, और बुख नसर के बारे में हमने फिर काफी सारी चीजें पिछली क्लास में आपको बताई भी थी। फिर उसके बाद चौथा वाकया जो है वो इसके 415 साल के बाद हुआ ना, 415 साल के बाद, हाँ, कि बुख नसर ने जो है वो एक दूसरी मरतबा हमला किया, और दूसरी मरतबा जो उसने हमला किया ना, इसमें इसने यानी पूरे शहर को जो है वो फ्लैट कर दिया, ऐसी आग लगाई कि हर चीज पिघल करके जो है वो खत्म हो गई। और फिर उसके बाद मजीद 70 साल गुजर गए, तो शाह ईरान ने फिर बाबुल पर चढ़ाई करके बाबुल को फतह कर लिया। बुख नसर जो है वो मर चुका था, और फिर बाबुल की जो शान शौकत थी वो खत्म हो गई, तो शाह ईरान ने फिर बाबुल पर हमला करके उसको भी फतह कर लिया। और फिर शाह ईरान ने उन यहूदियों को जो कि बुख नसर अपने साथ गुलाम बना करके ले आया था, उनको जो है वो बाकायदा बैतुल मुकद्दस में दोबारा रिस्टोर कर दिया, ठीक है, और उनका लूटा हुआ सामान वगैरह भी वापस कर दिया। अब ये शाह ईरान जो था ये खुद काफिर था, ये कोई मुसलमान नहीं था, यानी ये बनी इसराइल में से नहीं था, ना ना इसका अकीदा जो है वो इस्लाम वाला अकीदा था, लेकिन अल्लाह ताला जिससे चाहे काम ले लें, ठीक है ना। जैसे कि अल्लामा इकबाल ने शेर में लिखा है ना कि पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से, तो सनम खाने वाले जो होते हैं उनको भी अल्लाह ताला जो है वो तौफीक दे देते हैं, और वो मुसलमानों की मदद कर दिया करते हैं, ठीक है। खैर, वो तो तातारियों के बारे में शेर लिखा था, तातारी तो बाकायदा मुसलमान हो करके फिर उन्होंने दीन की मदद करी थी, लेकिन यहाँ पर जो है वो शाह ईरान ने ऐसे ही बनी इसराइल वालों की मदद कर दी। और ऐसा भी हुआ है, इवन हमारी तारीख में भी काफिरों से भी मदद मिली है मुसलमानों को। फिर उसके बाद पांचवा वाकया ये पेश आया, अब ये हमने आज से पढ़ना था, ये जो ये आज का सबक है, कि ये पेश आया कि जब यहूद को यहाँ इत्मीनान और आसूदगी दोबारा हासिल हो गई तो वो अपने माजी को भूल गए, और फिर बदकारी और बदआमाली में हो गए, ठीक है, यानी फिर वो इत्मीनान के साथ जब सेटल डाउन हो गए बैतुल मुकद्दस के अंदर शाह ईरान की मदद से, तो फिर जो है वो भाई इंसान भूल जाता है, उसके ऊपर मुसीबत आती है तो वो अल्लाह को याद करता है, और जब मुसीबत चली जाती है और खुशहाली आ जाती है तो उस वक्त जो है ना वो याद करना अल्लाह ताला को ज्यादा मुश्किल हो जाता है, मुसीबत में याद करना निस्बतन ज्यादा आसान होता है, ठीक है। तो यही फिर बनी इसराइल के साथ हुआ। तो हजरत मसीह अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 170 साल पहले ये वाकया पेश आया कि जिस बादशाह ने अंताकिया आबाद किया था उसने चढ़ाई कर दी, ठीक है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 170 साल पहले। तो अंताकिया के बादशाह ने इन पर चढ़ाई कर दी और 40,000 यहूदियों को कत्ल किया, 40,000 को कैदी और गुलाम बनाकर अपने साथ ले गया, और मस्जिद की भी बहुत बेहुर्मती करी, मगर इमारत मस्जिद की बच गई। मगर फिर उस बादशाह के जानशीनों ने शहर और मस्जिद को बिल्कुल मैदान कर दिया, तो उसके कुछ अरसे के बाद बैतुल मुकद्दस पर सलातीन रोम की हुकूमत हो गई, उन्होंने मस्जिद को फिर दुरुस्त किया, और उसके 8 साल बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, ठीक है। तो अब ये उनकी हिस्ट्री ऐसी, बस ऐसी चलती रही है। अंताकिया एक जो है वो माजी के शहरों में ना एक बहुत बड़ा नाम जो है वो अंताकिया के शहर का आता है। जैसे काहिरा का एक बहुत बड़ा नाम है, बाबुल का एक बहुत बड़ा नाम है, बगदाद का एक बहुत बड़ा नाम है, उसी तरह अंताकिया का जो शहर है वो फलस्तीन के करीब, ये भी एक बहुत मशहूर शहरों में से होता था। आजकल जो है वो शायद त्रिपोली, मुझे मैं एक्चुअली तहकीक नहीं कर सका इसकी, लेकिन त्रिपोली जो है वो शायद इसको पुराने जमाने में अंताकिया कहा जाता था या कोई और शहर, बिल्कुल इस वक्त जहन में नहीं। तो फिर उसके ताख्त व ताराज करने के बाद फिर जो रोमन्स की हुकूमत आई ना, रोमियो की, जो कि वो खुद मुसलमान नहीं थे, ठीक है, लेकिन रोमियो ने जो है वो फिर इन यहूदियों की मदद करी और उनको फिर से रिस्टोर कर लिया और फिर मस्जिद वगैरह भी दोबारा से बना दी, और उसके 8 साल बाद ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। क्या मतलब कि ये जमाना कौन से मशहूर नबी का जमाना था? हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम, ठीक है, हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम जो कि हजरत बीवी मरियम के खालू थे, ठीक है, एक यानी से पता चलता है कि खालू थे या एक से जो है वो कुछ और भी थोड़ा सा रिश्ता पता चलता है। तो जकरिया अलैहिस्सलाम के बेटे जो है वो यहया अलैहिस्सलाम, यही दौर था ना जिसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। यहया अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो कजन्स भी आता है इनका, ठीक है, और बहुत ही करीब उम्र थे ये दोनों के दोनों। मरियम अलैहिस्सलाम का यही जमाना था। तो फिर जो है वो ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, और वो जो जमाना था वो यहूदियों की यानी शान शौकत का जमाना था। वो बड़ी अच्छी तरीके से जो है वो बैतुल मुकद्दस के ऊपर कंट्रोल रखते थे, और इनका जो है ना वो बड़ी पहुंच थी शाह रोम के दरबार के अंदर। शाह रोम जो था वो इनका हलीफ था, इनके साथ यानी दोस्ताना ताल्लुकात थे इनके। जब भी ईसा अलैहिस्सलाम ने जब इनको बुराइयों से रोका, इनकी जो फिर वही बुत परस्तियां शुरू हो गई, जकरिया अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया, यहया अलैहिस्सलाम को शहीद करवा दिया, ठीक है, तो जाहिर है किस किस दर्जे की बुराइयों के अंदर ये फिर मुब्तला हो गए थे कि अम्बिया को शहीद कर दिया, ठीक है। तो उस वक्त फिर ईसा अलैहिस्सलाम को भी फिर इन्होंने इसी तरीके से मरवाने की कोशिश करी, और इसके लिए शाह रोम के कान भरे, ठीक है, कि तुम्हारी सल्तनत के खिलाफ जो है ना ये बगावत प्लान कर रहे हैं, तो इनको जो है वो कत्ल करने की जरूरत है या इनको गिरफ्तार करने की जरूरत है, और फिर वहीं से सारा का सारा सिलसिला शुरू हुआ। तो ये पांचवा वाकया उन्होंने लिखा। फिर उसके बाद छठा वाकया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के सऊद और रफ़े जिस्मानी के 40 बरस बाद ये वाकया पेश आया, यानी ईसा अलैहिस्सलाम जब आसमानों की तरफ अल्लाह ताला ने फरिश्ते भेज करके उनको उठवा लिया, तो उसके 40 ईयर्स के बाद कि यहूदियों ने अपने हुक्मरान सलातीन ने रोम से बगावत इख्तियार कर ली, ठीक है, तो रोमियों ने फिर शहर और मस्जिद को तबाह करके वही हालत बना दी जो पहले थी। उस वक्त के बादशाह का नाम क्लीकस था, जो ना यहूदी था ना नसरानी था, क्योंकि उसके बहुत रोज के बाद कस्तुंतीन अव्वल ईसाई हुआ है, ठीक है, कॉन्स्टेंटीन, अंग्रेजी में इसको कॉन्स्टेंटीन कहते हैं। ये जो है ना वो यानी ये मुसलमान हुआ था, जिसके नाम के ऊपर फिर यानी इसी सिलसिले से जो है वो तुर्की का जो शहर है इस्तंबोल, उसका नाम कॉन्स्टेंटिनोपल था, कॉन्स्टेंटिनोपल, क्योंकि वहां पर जो बादशाह कॉन्स्टेंटीन की हुकूमत होती थी, ठीक है। तो ये फिर बाद में ईसाई हो गया था। तो उसके बाद से हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला के जमाने तक ये मस्जिद वीरान पड़ी रही, यहाँ तक कि आप रजी अल्लाह तआला अन्ह ने उसकी तामीर करवाई। ये 6 वाकया तफसीर बयानुल कुरआन में बहावाले तफसीर हक्कानी लिखे गए हैं। तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला के बारे में आता है कि जब वो अपनी खिलाफत के जमाने में बैतुल मुकद्दस पहुंचे, ठीक है, क्योंकि बैतुल मुकद्दस का जो जो बड़ा पादरी था, तो उसने मुसलमान अफवाज को जो कि वहां पर हमला करने के लिए आई थी और बाहर वो पड़ाव डाली हुई थी, तो बैतुल मुकद्दस के पादरी ने उनको कहा कि भाई तुम अपने खलीफा से कहो को कि वो यहाँ पर आ जाए, ठीक है, अगर वो आ जाएंगे ना तो मैं बैतुल मुकद्दस की चाबियां जो है वो खुद उनके हवाले कर दूंगा, ठीक है। और ऐसे ही हुआ कि उमर फारूक ने जब आए एक ऊंट के ऊपर अपने खादिम के साथ, इस हालत में कि खादिम जो है वो ऊंट के ऊपर सवार था और ये जो है वो ऊंट की लगाम पकड़ करके चल रहे थे, तो पादरी ने ये सारी चीजें देखी, तो उसकी किताबों के अंदर ये निशानियां मौजूद थी उमर फारूक रजी अल्लाह तआला की निशानियां, ठीक है, कि वो कैसे होंगे, वो कैसे जो है वो कपड़े पहने हुए होंगे, उनकी शक्ल कैसी होगी, और उनका खादिम, और वो कैसे खादिम के साथ जो है वो तशरीफ ला रहे होंगे। यानी इनकी किताबों के अंदर नबी अलैहिस्सलाम की निशानियां, तो क्या नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा की निशानियां भी मौजूद थी, ठीक है। तो फिर उमर फारूक रजी अल्लाह जो है वो इसके साथ बैतुल मुकद्दस के शहर के अंदर दाखिल हुए, और इसके साथ चलते चलते जो है ना फिर यहाँ पर मस्जिद मस्जिद यानी जिसको हैकेले सुलेमानी कहा जाता है वहां पे पहुंचे, तो वो हैरान रह गए देख करके कि उसको तो इन लोगों ने गार्बेज डंप बनाया हुआ था, कचरे का ढेर बनाया हुआ था, वहां पे जो है ना वो नजासत और बुरी यानी गंद पड़ी हुई थी वहां पे पूरे शहर की। तो वो हैरान हो गए कि ये क्या है, ये तो सुलेमान अलैहिस्सलाम की बनाई हुई जो है वो मुकद्दस तरीन जगह है, ये तो मुसलमानों का किबला है, ठीक है, किबला अव्वल है ये। तो उन्होंने जो है ना वो मतलब ये इनकी अपनी तारीख में है कि उमर रजाना उन्होंने जो है ना वहीं पर अपने हाथ से ही उस जगह की सफाई शुरू कर दी, एकदम जैसे कि दीवाने होकर के कि ये इस मुकद्दस मकाम को इन लोगों ने क्या किया हुआ है, ठीक है। तो फिर उसके बाद जो है ना वो उमर रजाना उन्होंने वहां पर ये पूरा का पूरा निज़ाम तब्दील किया, और ये ईसाइयों को भी इजाजत दी कि वो यहाँ पे रहते रहे, सिवाय उनके जो हुकूमत के लोग थे उनको कहा कि तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, बाकी ईसाई जो है वो यहाँ पे रह सकते हैं। यहूदियों को जो है वो बाकायदा दोबारा से बसाया, दोबारा बसाया ला करके, यहूदियों को इन्होंने मार मार करके खत्म कर दिया था, और बाकी यहूदियों को जो है वो बैतुल मुकद्दस से बाहर निकाल दिया था ईसाइयों ने। उमर रजी अल्लाह तआला उन्होंने वो वापस ला करके कि भाई ये सबका शहर है, और मुसलमान तो यहाँ पे आ ही गए, ईसाई और यहूदी भी यहाँ पर रहेंगे, ठीक है। और ये सिलसिला जो है वो फिर उसके बाद चलता रहा है, जब तक कि फिर ईसाइयों ने क्रूसेड्स के जरिए से फिर बैतुल मुकद्दस के ऊपर दोबारा कब्जा किया। तो अब ये छठा वाक्य बयान करके फिर हजरत लिखते हैं कि ये बात अब ये बात कि कुरान करीम ने जिन दो वाकयों का जिक्र किया है वो इनमें से कौन से हैं, ठीक है, इन छह वाकयात में से कौन से हैं, तो उसकी कतई तयीन तो मुश्किल है, लेकिन जाहिर ये है कि उनमें से जो वाकयात ज्यादा संगीन और बड़े हैं, जिनमें यहूद की शरारतें भी ज्यादा हुई और सजा भी उनको सख्त मिली, उन पर महमूल किया जाए, और वो कौन से थे, वो छठा और चौथा और छठा वाकया है, चौथा और छठा वाक्य। तफसीर कुतुबी में यहाँ एक तवील हदीस मरफू हदीस मरफू बर रिवायत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला नकल की है, इससे भी इसकी तायीन होती है कि इन दो वाक्यों से मुराद चौथा और छठा वाक्य है। इस तवील हदीस का तर्जुमा ये है, ठीक है, चौथा और छठा वाक्य यानी एक वाक्य जो है वो ईसा अलैहिस्सलाम से पहले का, और एक वाक्य ईसा अलैहिस्सलाम के बाद का। तो हजरत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि बैतुल मुकद्दस अल्लाह ताला के नजदीक बड़ी अजीमुल कदर मस्जिद है, तो आपने फरमाया कि वो दुनिया के सब घरों में एक मुमताज कि वो दुनिया के सब घरों में एक मुमताज अजमत वाला घर है, जिसको अल्लाह ताला ने सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए सोने चांदी और जवाहरात याकूत और जुमर्द से बनाया था। और ये इस तरह कि जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसकी तामीर शुरू की तो हक ताला ने जिन्नात को उनके ताबे कर दिया, जिन्नात ने ये तमाम जवाहरात और सोने चांदी जमा करके उनसे मस्जिद बनाई, ठीक है। अगरचे के जिन्नात जो थे ये सारे मुसलमान नहीं थे, ये काफिर जिन्नात थे, लेकिन फरिश्तों को इनका पहरेदार बना करके कि अगर ये बात ना माने तो इनको आहनी कोड़ों से मारना, ठीक है। तो इस तरीके से इन जिन्नात के जरिए से काम करवाया अल्लाह ताला ने, ठीक है। तो हजरत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं कि मैंने अर्ज किया कि फिर बैतुल मुकद्दस में ये सोना चांदी और जवाहरात कहाँ और किस तरह गए, यहाँ से कैसे कहाँ चले गए सारे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बनी इसराइल ने अल्लाह ताला की नाफरमानी की और गुनाहों और बदअमालियों में मुब्तला हो गए, अम्बिया अलैहिस्सलाम को कत्ल किया, तो अल्लाह ताला ने उन पर बुख्त नसर बादशाह को मुसल्लत कर दिया जो मजूसी था, ठीक है, फायर वर्शिपर, आग की परस्तिश करने वाला। तो उसने 700 बरस बैतुल मुकद्दस पर हुकूमत की। और कुरान करीम में आयत फैदा जा वादुलाहुमा बासना अलैकुम इबादल लना उली बासन शदीदन से यही वाकया मुराद है। बुख नसर का लश्कर मस्जिद कुदस में दाखिल हुआ, मर्दों को कत्ल और औरतों बच्चों को कैद किया, और बैतुल मुकद्दस के तमाम अमवाल और सोने चांदी जवाहरात को 170,000 गाड़ियों में भर कर ले गया और अपने मुल्क बाबुल में रख लिया, और 100 बरस तक उन बनी इसराइल को अपना गुलाम बनाकर तरह तरह की बामशक्कत खिदमत और जिल्लत के साथ खिदमत जिल्लत के साथ उनसे लेता रहा। फिर अल्लाह ताला ने फारस के बादशाहों में से एक बादशाह को उसके मुकाबले के लिए खड़ा कर दिया, जिसने बाबुल को फतह किया और बाकी मानदा बनी इसराइल को बुख नसर की कैद से आजाद कराया, और जितने अम्वाल वो बैतुल मुकद्दस से लाया था वो सब वापस बैतुल मुकद्दस में पहुंचा दिए, और फिर बनी इसराइल को हुक्म दिया कि अगर तुम फिर नाफरमानी और गुनाहों की तरफ लौट जाओगे तो हम भी फिर कत्लो कैद का अजाब तुम पर लौटा देंगे। आयत कुरान असा रब्बुकुम अन यरहमकुम व इन उदतुम उदना से यही मुराद है, ठीक है। यानी नबी अलैहिस्सलाम जो हैं वो इन आयतों की तफसीर बयान कर रहे हैं अपने सहाबी हजरत हुजैफा रजी अल्लाह तआला अन्हु को, ठीक है। वरना ये आयतें जो हैं अरबी जुबान के अंदर मौजूद हैं, इनका तर्जुमा तो हुजैफा रजी अल्लाह तआला को आता होगा, लेकिन इनका मतलब क्या है, इनकी तफसीर क्या है, इनके पीछे तफसील क्या है, ये तो नहीं मालूम थी। तो ये तफसील जो है वो हजरत नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा को बताई, ठीक है। तो पहली तफसीर जो है ना वो कुरान मजीद की, वो नबी अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाई, अगरचे कि ये बहुत ज्यादा तफसीरी तफसीर नहीं थी। फिर उसके बाद सहाबा कराम ने जो है वो बाकी तफसीर जो है वो अपने अल्लाह ताला ने जो उनको इल्म सिखाया था नबी अलैहिस्सलाम के वास्ते से उसके जरिए से फिर बाकी आयात की भी तफसीर फरमाई। यही हदीस आगे कंटिन्यू हो रही है कि जब बनी इसराइल बैतुल मुकद्दस में लौट आए और सब अमवाल और सामान भी कब्जे में आ गया तो फिर मआसी और बदआमालियों की तरफ लौट गए। उस वक्त अल्लाह ताला ने उन पर शाह रोम कैसर को मुसल्लत कर दिया। आयत फ़ाइदा जा वादुल आखिरत लियसूउ वुजूहकुम से यही मुराद है। शाह रोम ने उन लोगों से बर्री और बहरी दोनों रास्तों पर जंग की और बहुत से लोगों को कत्ल और कैद किया, और फिर तमाम इन अमवाले बैतुल मुकद्दस को 170,000 गाड़ियों पर लाद कर ले गया और अपने कनीसतो जहब में रख दिया। कनीसतो जहब रोम के अंदर जो इनका यानी जिसको कि वो क्या है ये इनका कैथोलिक्स का जो क्या वो शहर है किसी को नाम इसका याद, रोम के अंदर जो उनका तो इनका जो गोल्ड का एक कनीसा बहुत बड़ा जो इनका कैथीड्रल है तो उसके अंदर इसमें जाकर के इसने रख दिया। ये सब अमवाल अभी तक वही है और वही रहेंगे यहाँ तक कि हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम जी जज़ाकल्लाह वैटिकन सिटी, तो यहाँ तक कि हजरत मेहदी रहमतुल्लाह अलैह फिर उनको बैतुल मुकद्दस में 170,000 कश्तियों में वापस लाएंगे, और इसी जगह अल्लाह ताला तमाम अव्वलीन और आखरीन को जमा कर देंगे, ठीक है। यानी ये एक दफा फिर जो है वो इस तरह का मामला होगा जो कि अभी तक हमारे सामने हुआ नहीं है, और ये फिर यानी 170,000 से मुराद जो है वो एग्जैक्टली यानी 170,000 जरूरी नहीं है, बल्कि इसका मतलब यानी 70,000 का जो अदद इस्तेमाल किया जाता है ना बहुत बड़ी तादाद के लिए इस्तेमाल किया जाता है अरबी जुबान के अंदर, 60 और 70 और 700 और 7,000 इसका यही मफहूम लिया जाता है। तो बयानुल कुरान में है कि दो वाक़े जिनका जिक्र कुरान मजीद में आया है इससे मुराद दो शरीयतों की मुखालफत है, पहले शरीयत मूसवी की मुखालफत और फिर ईसा अलैहिस्सलाम की बेसत के बाद शरीयत ईसाविया की मुखालफत है। इस तरह पहली मुखालफत में वो सब वाक़ात दर्ज हो सकते हैं जो ऊपर बयान किए गए हैं। वाक़ात की तफसील के बाद आयात मज़कूरा की तफसीर देखिए, ठीक है। तो ये वाकयात मुकम्मल हुए तो इस हदीस मुबारक से ये काफी डिटरमिन हो जाता है कि चौथा और छठा वाकया जो है वो कुरान मजीद की आयात में एग्जैक्टली मुराद है, और बाकी बाकी सारी चीजें जो है उसकी तफसीलात हैं, ठीक है। अब जो है वो हम आरूफ मसाइल पढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले छोटी सी एक ब्रेक सारे इसको चाहिए काम की वजह से, तो आप पॉज कर दीजिए प्लीज। जी रिज्यूम कर लीजिए प्लीज। मारिफ मसाइल, तो इसमें फरमाते हैं कि मजकूर सदर वाकयात का हासिल ये है कि बनी इसराइल के मुतालिक हक तआला ने यह फैसला फरमा दिया था कि वो जब तक अल्लाह ताला की अतात करेंगे दीन और दुनिया में फायजुल मराम और कामयाब रहेंगे, यानी इज्जतों के ऊपर फाइज रहेंगे दीन और दुनिया के अंदर, और कामयाबी उनके कदम चूमती रहेगी, और जब कभी दीन से इनहराफ करेंगे जलील और खौर हो जाएंगे, किए जाएंगे, और दुश्मनों काफिरों के हाथों उन पर मार डाली जाएगी। यानी मार पिटाई उनकी होगी, मार डाली जाएगी। इंडिया में जो है वो मार डालना कहा जाता है, और पाकिस्तान में हम लोग अब जो है ना वो उर्दू इस तरह मारना, ठीक है, तो दोनों तरीके से मार पड़ेगी, मार डाला भी जाएगा और मार पड़ेगी भी, जो भी है दोनों की चीज आती है। पहरा, तो ये बात तो आप बचपन से सुनते आ रहे होंगे और आज भी दोबारा सुन रहे हैं, और हकीकत ये हकीकत तो तब्दील नहीं होती, चाहे जमाना तब्दील हो जाए, हकीकत तब्दील नहीं होती। फिर फरमाया कि सिर्फ यही नहीं कि दुश्मन उन पर गालिब होकर उनकी जान और माल को नुकसान पहुंचाएंगे, बल्कि उनके साथ उनका किबला जो बैतुल मुकद्दस है वो भी उस दुश्मन की जद से महफूज नहीं रहेगा। उनके काफिर दुश्मन मस्जिद बैतुल मुकद्दस में घुसकर उसकी बेहुर्मती और तोड़फोड़ करेंगे, ये भी बनी इसराइल की सजा ही का एक जुज होगा। ठीक है, तो बैतुल मुकद्दस की जो मस्जिद है ये तो यानी अंबिया का किबला, ताकि नबी अलैहिस्सलाम का किबला अव्वल, और यानी इससे ज्यादा मुकद्दस जगह तो बस उसके बाद फिर काबतुल्ला और मस्जिद नबवी ही है। ठीक है, तो जब ये महफूज नहीं रह सकें, ये मस्जिदें महफूज नहीं रह सकें, तो फिर दुनिया की दूसरी मस्जिदें कैसे महफूज रह सकती हैं काफिरों से। ठीक है, इंडिया की मस्जिद हो उसके अंदर जो है वो मंदिर बना दें, वो तोड़ फोड़ कर दें, या बोस्निया की मस्जिदें हो, बोस्निया जो यूरोप का एक शहर है, तो जब सर्बियंस ने बोस्निया के ऊपर हमला किया तो सबसे पहले वो मस्जिद को ही गिराते थे, ठीक है, उसके मीनार को गिराते थे, उसके इमाम को जो है वो शहीद करते थे, और जो है वो मस्जिद के अंदर तोड़ फोड़ और यानी मोर्टर बमों से जो है वो मस्जिद को उड़ाते थे। ठीक है, तो जिस चीज को आप इज्जत देते हैं ना, जब आप अल्लाह के हुक्मों के इज्जत नहीं देते ना, तो फिर अल्लाह ताला आपको हर तरीके से जलील करते हैं और आपकी चीजों को तोड़ फोड़ करवा देते हैं दुश्मन से। ये भी बनी इसराइल की सजा ही का एक जुज होगा। कुरान करीम ने इनके दो वाकये बयान फरमाए, पहला वाकया शरीयत मुसविया के जमाने का है और दूसरा शरीयत ईसविया के जमाने का। इन दोनों में बनी इसराइल ने अपने वक्त की शरीयत इलाहिया से इनहराफ करके सरकशी अख्तियार की। तो पहले वाकये में एक मजूसी काफिर बादशाह को उन पर और बैतुल मुकद्दस पर मुसल्लत कर दिया गया, जिसने तबाही मचाई, और दूसरे वाकये में एक रोमी बादशाह को मुसल्लत किया जिसने उनको कत्ल व गारत किया और बैतुल मुकद्दस को मुनहदिम और वीरान किया। इसी के साथ ये भी जिक्र कर दिया गया है कि दोनों मरतबा जब बनी इसराइल अपनी बदअमालियों पर नादिम होकर तायब हुए तो फिर अल्लाह ताला ने उनके मुल्क दौलत और आलो औलाद को बहाल कर दिया। ठीक है, तो तौबा का दरवाजा भी खुला होता है, जब तौबा कर लेते हैं तो अल्लाह ताला जो है ना वो मामला को फिर से मवाफिक कर देते हैं। एक मिनट प्लीज, मैं इसको पॉज कर रहा हूँ। अब ये कोई बहुत ज्यादा इसमें तफसील की जरूरत तो नहीं नजर आ रही, तो इस पर बस ये आज अभी पढ़ता चला जा रहा है कि इन दोनों वाकयात के जिक्र के बाद आखिर में अल्लाह ताला ने इन मामलात में अपना जाब्ता बयान फरमाया, व इन उत्तम उदना, यानी अगर तुम फिर नाफरमानी और सरकशी की तरफ लौटोगे तो हम फिर इसी तरह की सजा व अजाब तुम पर लौटा देंगे। ये जाब्ता कयामत तक के लिए इरशाद हुआ है, वह इन उत्तम उदना, ठीक है, और इसके मुखातब वो बनी इसराइल थे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में मौजूद थे, जिसमें इशारा कर दिया गया है कि जिस तरह पहले शरीयत मुसविया की मुखालफत से और दूसरी तरफ शरीयत ईसविया की मुखालफत से तुम लोग सजा व अजाब में गिरफ्तार हुए थे, अब तीसरा दौर शरीयत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है जो कयामत तक चलता रहेगा, उसकी मुखालफत करने का भी वही अंजाम होगा। ठीक है, यानी अब जो दीन इस्लाम है ना, वो नबी अलैहिस्सलाम की शरीयत का नाम है। पहले जो था वो ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत का नाम दीन इस्लाम था, और उससे पहले मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत का नाम दीन इस्लाम था। ठीक है, तो तुम बेसिकली जब भी इस्लाम की मुखालफत करोगे ना, तो तुम्हारे साथ वही अंजाम होगा जो पहले हुआ है। चुनाचे ऐसे ही हुआ कि इन लोगों ने शरीयत मुहम्मदिया और इस्लाम की मुखालफत की, तो मुसलमानों के हाथों जला वतन और जलील खुवार हुए, और बिलाखिर उनके क़िबले बैतुल मुक़द्दस पर भी मुसलमानों का कब्जा हो गया। फर्क ये रहा कि पिछले बादशाहों ने उनको भी जलील खुवार किया था और उनके क़िबला बैतुल मुक़द्दस की बेहुरमती भी की थी। अब मुसलमानों ने बैतुल मुक़द्दस फतह किया, तो मस्जिद बैतुल मुक़द्दस जो सदियों से मुनहदम और गैर आबाद पड़ी थी, उसको अस्सर नौ तामीर किया और इस क़िबले अंबिया के एहतराम को बहाल किया। ठीक है, तो मुसलमान जो है ना, उनकी खास बात क्या थी नबी अलैहिस्सलाम के मुतबे जो मुसलमान थे, कि वो ना तो इंसानों को ताख्त तराश करते थे और ना जो है वो उनके मुकद्दस मकामात को ताख्त तराश करते हैं। ठीक है, तो बस जो जो अक्सर तो जो लड़ाई करने वाले मर्द होते थे उनको भी छोड़ दिया जाता था। ठीक है, लेकिन कभी जो है वो जो लड़ाई करने वाले थे सिर्फ उनको कत्ल किया जाता था, बाकी किसी को जो है वो कत्ल नहीं किया जाता था। औरतों बच्चों को भी मना मना कर दिया कत्ल करने से वगैरह। तो इन यहूदियों के ऊपर इस तरीके से मुसलमानों के हाथों फिर से अजाब आया। वाकयात बनी इसराइल मुसलमानों के लिए इबरत हैं। मौजूदा वाकया बैतुल मुकद्दस इसी सिलसिले की एक कड़ी है। अभी मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह ने इसके ऊपर मजमून बांधा कि मुसलमानों के लिए इसके अंदर, क्योंकि ये जो कुरान मजीद के अंदर जो तस्करा होता है, ये तो मुसलमानों के लिए भी इबरत होती है ना, खाली बनी इसराइल के लिए तो इबरत नहीं है कुरान मजीद, मुसलमानों के लिए किताब हिदायत हिदायत है। तो फरमाते हैं कि बनी इसराइल के वाकयात कुरान करीम में बयान करने और मुसलमानों को सुनाने से बज़ाहिर मकसद यही है कि मुसलमान भी इस ज़ाबता इलाहिया से मुस्तस्ना नहीं है। ठीक है, दुनिया व दीन में उनकी इज्जत व शौकत और माल दौलत अताअत खुदाबंदी के साथ वाबस्ता हैं। जब वो अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत से इनहिराफ करेंगे, तो उनके दुश्मनों और काफिरों को उन पर गालिब और मुसल्लत कर दिया जाएगा, जिनके हाथों उनके माबद वह मसाजिद की बेहुरमती भी होगी। ठीक है, माबद यानी जो इबादत की जगह है, और मसाजिद सजदे की जगह, यानी एक ही चीज, तो उनकी भी बेहुरमती होगी। आजकल जो हादसा फाजिया बैतुल मुकद्दस पर यहूदियों के कब्जे का और फिर उसको आग लगाने का सारे आलम इस्लाम को परेशान किए हुए है, हकीकत यह है कि ये उसी कुरानी इरशाद की तस्दीक हो रही है। ठीक है, यानी बैतुल मुकद्दस को आग लगने वाला वाकया जो है वो इसी जमाने में हुआ था जब मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह जो है वो तफसीर मारुल कुरान लिख रहे थे। तो हाँ, मुसलमानों ने खुदा और रसूल को भुला दिया, आखिरत से गाफिल होकर दुनिया की शान और शौकत में लग गए और कुरान और सुन्नत के अहकाम से बेगाना हो गए, तो वही ज़ाबता कुदरत इलाहिया सामने आया कि करोड़ों अरबों पर चंद लाख यहूदी गालिब आ गए। उन्होंने उनकी जान व माल को भी नुकसान पहुंचाया और शरीयत इस्लाम की रूह से दुनिया की तीन अजीम शान मस्जिदों में से एक, जो तमाम अंबिया का किबला रहा है, वो उनसे छीन लिया गया और एक ऐसी कौम गालिब आ गई जो दुनिया में सबसे ज्यादा जलील व ख्वार समझी जाती थी, यानी यहूद। ठीक है, जो इनके मुल्क का क्याम हुआ 1948 के अंदर, तो अरब कुछ ना कर सके, बराबर में जॉर्डन भी था और मिस्र भी था और इतना कुछ था, लेकिन ये काबिज हो गए। इस पर मजीद ये मुशाहिदा है कि वो कौम ना तादाद में मुसलमानों के मुकाबले में कोई हैसियत रखती है और ना मुसलमानों के मजमूई मौजूदा सामान हर्ब के मुकाबले में उसकी कोई हैसियत है। यानी उस वक्त जो है ना, वो इनकी कोई मिलिट्री पावर भी इतनी ज्यादा नहीं थी। ठीक है, वो तो बाद में जाकर के वो न्यूक्लियर पावर बने और उसके बाद न जाने और क्या क्या उन्होंने किया, लेकिन उस वक्त तो थोड़ी थी ये सारी पावर्स इनके पास। और मुसलमानों के पास बाकायदा यानी स्टैंडिंग आर्मीज इतनी बड़ी बड़ी मुसलमान मुल्कों के पास थी, लेकिन कुछ ना कर सके। इससे यह भी मालूम हो गया कि ये वाकया यहूद को कोई इज्जत का मुकाम नहीं देता, बल्कि मुसलमानों के लिए उनकी सरकशी की सजा जरूर है, जिससे साफ जाहिर है कि ये जो कुछ हुआ हमारी बदअमालियों की सजा के तौर पर हुआ और इसका इलाज इसका इलाज बजुज इसके कुछ नहीं कि हम फिर अपनी बदामालियों पर नादिम होकर सच्ची तौबा करें, अहकाम इलाहिया की अताआत में लग जाएं, सच्चे मुसलमान बने, गैरों की नक्काली और गैरों पर एतमाद के गुनाह अजीम से बाज आ जाएं। ठीक है, अपनी बदामालियां यानी जो हमने अपने ही दीन को बिगाड़ बिगाड़ करके जो है वो बिदतें और खराफात और यानी अमलियात और न जाने क्या क्या उल्टी सीधी चीजें जो है वो अपने दीन के अंदर बिगाड़ बिगाड़ करके शुरू करी हुई है, उससे भी हम तौबा करें। और जो हम काफिरों की नकाली यानी जो वेस्टर्नाइजेशन और जो है वो मॉडर्नाइजेशन जिसके जरिए से यानी इनके पीछे पीछे भागना, उनके जैसे अपने घरानों का और अपने तालीमी निजाम का सारा जो है वो हमने मामला बनाया हुआ है, तो इन सब के ऊपर नादिम होकर सच्ची तौबा करें। ठीक है, उनके ऊपर एतमाद करना बल्कि बजाय जो है वो अल्लाह के वादों के ऊपर एतमाद करना शुरू करें। ठीक है, तो हस्बे वादाए रब्बानी इंशाअल्लाह ताला बैतुल मुकद्दस और फलस्तीन फिर हमारे कब्जे में आएगा, मगर अफसोस ये है कि आजकल के अरब हुक्मरान और वहां के आम मुसलमान अब तक भी इस हकीकत पर मुतनब्बे नहीं हुए। वो अब भी गैरों की इमदाद पर सहारा लगाए हुए बैतुल मुकद्दस की वापसी के प्लान और नक्शे बना रहे हैं। वो तो पहले बना रहे थे, अब वो भी जानते ही हैं कि दुनिया में क्या क्या तब्दीलियां आ गई हैं, जिसका बजाहिर कोई इम्कान नजर नहीं आता। फ़इरल्लाहिल मुश्तका, वो असलहा और सामान जिससे बैतुल मुकद्दस और फलस्तीन फिर मुसलमानों को वापस मिल सकता है, सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ इनाबत व रुजू, आखिरत पर यकीन, अहकाम शरिया का इत्तबा, अपनी मुआशरत और सियासत में गैरों पर एतमाद और उनकी नकारी से इज्तनाब, और फिर अल्लाह पर भरोसा करके खालिस इस्लामी और शरी जिहाद है। अल्लाह ताला हमारे अरब हुक्मरानों और दूसरे मुसलमानों को उसकी तौफीक अता फरमाए। ठीक है, यानी सबके लिए ही दुआ कर रहे हैं, क्योंकि हकीकत यह है कि सिर्फ कोई एक तबका या एक जो है वो नस्ल इस यानी गुनाहों के अंदर मुब्तला नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमान इस वक्त सख्त किस्म के गुनाहों के अंदर मुब्तला हो चुके हैं। इसके बाद एक अजीब मामले की उन्वान में लिखते हैं कि अल्लाह ताला ने जमीन में अपनी इबादत के लिए दो जगहों को इबादत करने वालों का किबला बनाया है, एक बैतुल मुकद्दस, दूसरा बैतुल्लाह, मगर कानून कुदरत दोनों के मुताबिक अलग अलग है। बैतुल्लाह की हिफाजत और कुफार का उस पर गालिब ना आना, ये अल्लाह ताला ने खुद अपने जिम्मे ले लिया है। इसका नतीजा वो वाकया फील है जो कुरान करीम की सूरह फील में जिक्र किया गया है कि यमन के नसरानी बादशाह ने बैतुल मुकद्दस पर चढ़ाई की तो अल्लाह ताला ने मां उसके हाथियों की फौज के बैतुल्लाह के करीब तक जाने से पहले ही परिंदे जानवरों के जरिए उसको हलाक बर्बाद कर दिया। लेकिन बैतुल मुकद्दस के मुताल्लिक ये कानून नहीं, बल्कि आयात मस्कूरा से मालूम हुआ है कि जब मुसलमान गुमराही और मासी में मुब्तला होंगे तो उनकी सजा के तौर पर उनसे यह किबला भी छीन लिया जाएगा और कुफार उस पर गालिब आ जाएंगे। ठीक है, तो काबतुल्ला की हिफाजत जो है ना वो अल्लाह ताला ने फरमाई है काफिरों से, लेकिन बैतुल मुकद्दस की ऐसी हिफाजत जो है वो नहीं फरमाई। काफिर भी अल्लाह के बंदे हैं मगर उसके मकबूल नहीं। ठीक है, टाइम हमारा जो है वो खत्म हो गया है, तो इसको हम फिर अगली क्लास के अंदर ही पढ़ते हैं, ठीक, क्योंकि इसके ऊपर शायद थोड़ी नदी तशरी वगैरह की जरूरत पड़े जिसकी वजह से के क्लास का टाइम जो है वो ज्यादा हो जाएगा। इस वक्त अगर किसी को कोई सवाल है या कोई कमेंट है तो आप चैट विंडो के ऊपर लिख करके पूछ सकती हैं। तो सूरह बनी इसराइल की तफसीर हम इस क्लास के अंदर पढ़ते हैं जो कि पीर को हुआ करती है, और फिर बुध को जो क्लास होती है उसके अंदर एक तो ये आजिज शमाइले नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो तस्हील महर्षि ज़ेवर से पढ़ रहा होता है, और उसके बाद फिर मिसाली औरत के लेक्चर अभी कंटिन्यू हो रहे हैं और जिसके अंदर के मिसाली बीवी का टॉपिक पढ़ रहे हैं। अच्छा, इन्होंने एक कमेंट लिखा है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कामिल सुपुर्दगी का इनाम ये हुआ कि अल्लाह ताला ने घर की हिफाजत खुद फरमाई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबतुल्लाह को बनाया था तो अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कामिल सुपुर्दगी की वजह से काबतुल्लाह की हिफाजत फरमाई। कहने को तो आप कह लें ये, लेकिन कहीं हमने इस तरह से पढ़ा या सुना नहीं है अपने काबरीन से। बस फर्क जो है वो बुनियादी तौर पर यह है कि काबतुल्ला जो है ये खसूसन अल्लाह ताला ने जो है ना वो अपना घर इसको करार दिया काबतुल्ला को, ठीक है। बैतुल मुकद्दस जो है ना वो यानी एक मस्जिद है, ठीक है, जो कि काबतुल्ला की बेटियों में तो आती है, ठीक है, लेकिन वो खुद जो है वो काबतुल्ला बैतुल्ला नहीं है, ठीक है। बैतुल्ला जैसे हर मस्जिद को बैतुल्ला कहा जाता है ना, लेकिन आपके मोहल्ले की जो मस्जिद है तो वो तो अल्लाह का घर है मस्जिद, ठीक है, लेकिन कहने का मतलब क्या होता है कि वो असल में काबतुल्ला की बेटी है। क्या मतलब कि काबतुल्ला के ऊपर अल्लाह ताला की जो जाती तजल्लियात है ना वो काबतुल्ला के ऊपर वारिद होती है और फिर वहां से जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होती हैं दुनिया की सारी मस्जिदों में, ठीक है। तो उन मस्जिदों में फिर सारी मस्जिदें आ जाती हैं, चाहे वो मस्जिद नबवी हो, चाहे वो बैतुल मुकद्दस की मस्जिद हो, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान जहाँ की भी मस्जिद हो। तो काबतुल्ला का एक अलग मामला है, ठीक है। जहां तक जो है वो मस्जिद नबवी का मामला आता है तो मस्जिद नबवी जो है वो तो नबी अलैहिस्सलाम की जात मुबारक वहां पर मौजूद है, तो अल्लाह ताला ने उसकी भी हिफाजत फरमाई है मस्जिद नबवी की, ठीक है, जिसके अंदर नबी अलैहिस्सलाम की जात मुबारक मौजूद है, काफिरों से उसकी हिफाजत फरमाई है। अच्छा, बाकी क्या ये क्लास बच्चों को सुना सकते हैं? ये वाली क्लास, दरस कुरान वाली क्लास सुना तो सकते हैं, लेकिन बहुत छोटे बच्चों को नहीं, क्योंकि कभी कभी फिर आप लोगों के जब वो आती है डांट वांट भी फिर पढ़ना शुरू हो जाती है, तो इस वाली को रहने दें, छोटे बच्चों के लिए नहीं, ये 15 साल के करीब या उनसे ऊपर के बच्चों के लिए दरस कुरान की क्लास ठीक है, लेकिन उससे कम के लिए नहीं। ठीक है, फिर हम यहाँ पे क्लास में खत्म करते हैं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।